मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 30 जून 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं दूसरी बातों पर आऊं, आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो मैं बताना चाहूंगा। कल हम लोग विनिवेश पर बात कर रहे थे, आज हम विनिवेश पर बात नहीं करेंगे, आज हम विनिवेश पर विचार करेंगे, थोड़ी सी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, कैसे है, इस पर आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन कुछ सूचनाएं मैं आप लोगों को देता हूं, यहां देना चाहूंगा, और वह यह कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि अभी तक मिल रही हैं, और साथ ही साथ कुछ और मटेरियल भी आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि आपका जो संडे का दिन है वो भी पूरा भरा पूरा हो। तो मित्रों, प्रेस क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी ही, साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के आपको 4 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर के 4 होते हैं, हालांकि मैगजीन 2 ही होती है। 2 आर्टिकल आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 2 आर्टिकल आपको हिंदी के मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न जो मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें और तैयारी करके उत्तर लिखने का आपका अभ्यास भी होता चला जाए। और मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा कि इसके लिए मैं जो इस टॉपिक को चुनता हूं, मेरी दृष्टि में वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी साल के मेंस की दृष्टि से। जैसे अभी जो आपके मेंस के एग्जाम होने हैं, तो मैं मान करके चलता हूं कि जिस टॉपिक पर मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है उसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी दूसरों से बेहतर है। और मित्रों, इसी के साथ ही जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, इन सूचनाओं के बाद अब मैं आता हूं थोड़ी सी न्यूज की जानकारी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है मित्रों, इस तरह के नहीं है कि जिनको लेकर के हम डिस्कस कर सकें, लेकिन सूचना के तौर पर कुछ अच्छी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जीएसटी आज रात से लागू होने जा रहा है, मध्य रात्रि से। दूसरी आजादी का नाम इन्हों इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसे आर्थिक आजादी उन्होंने कहा है। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया था और यह फैसला किया गया था, उस दिन मैंने मध्य रात्रि को लेकर के इसके महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की चर्चा आपसे की है। मुझे लगता है कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, उसे मैं अब यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। मित्रों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने अभी साफ साफ कह दिया है कि जो गोरखालैंड में अलग राज्य की मांग का आंदोलन चल रहा है, कि वो राज्य का विभाजन नहीं होने देंगी, यानी कि अलग राज्य के मांग को स्वीकार नहीं करेंगी। ये बस एक पूरे के पूरे जो आंदोलन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो अभी कुछ दिनों से जारी है, उस पर ये चीफ मिनिस्टर का वक्तव्य मायने रखता है। तो मैंने केवल आपको उससे परिचित कराया है। दोस्तों, इसी के साथ ही न्यूज में आपने सुना, उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही आपने एक न्यूज के साथ ही आपने एक तथ्य और सुना था कि इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्री की मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस उठाकर देखें तो याद रखिए कि बहुत कम प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको सीधे सीधे किताब से मिल जाए। ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है आपको मालूम है, लेकिन पॉलिटी मालूम है कि नहीं है। और जब भी ऐसे अवसर आते हैं, मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विस की सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वह उन चैप्टर्स को उठाकर देखे। चैप्टर्स को उठाकर देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है उसमें से आपने कुछ छांटी जो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी आपको छांटनी पड़ेंगी जो अति महत्वपूर्ण है। वो केवल इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये दोनों टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, भले इनसे एक भी प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, लेकिन हम लिबर्टी नहीं ले सकते। तो मित्रों, आपको चाहिए कि आप इनकी बहुत अच्छी तैयारी करें और कंपैरेटिवली तैयारी करें, और जो इसके शेड्स दिखाई देते हैं उन पर आपका ज्यादा ध्यान हो, क्योंकि प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो उन्हीं से ही पूछे जाएंगे। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने कहा मनोनीत सदस्यों को छोड़कर जितने भी सदस्य हैं वो चुनाव में भाग लेंगे। आपको मालूम है कि लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत होते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक इसी तरह से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में विख्यात होते हैं। तो इस चुनाव में ये मनोनीत सदस्य तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा वो कर गया, इसमें भाग लेते हैं। लेकिन आप राष्ट्रपति चुनाव में देखेंगे तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वहां आपको एक अलग स्थिति दिखाई देगी, वहां मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और यहां तक कि कुछ राज्य की विधानसभाओं में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी भाग नहीं लेते हैं, पूरे के पूरे निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो यहां आपको ये अंतर बहुत क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो खबर थी उसमें आपने देखा कि अब हमारे पास सिर्फ दो कैंडिडेट रह गए हैं, और वे कैंडिडेट हैं कोविंद जी और मीरा कुमार, बाकी सभी के जो नामांकन पत्र थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। उन नामांकन पत्र के निरस्त करने के पीछे कारण क्या था कि जो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए उस शर्त को वो पूरा नहीं कर रहे थे। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए बहुत जरूरी है कि 50 सदस्य प्रस्तावक हों, जिनको हम कहते हैं प्रपोज्ड करने वाले हों, और इसके बाद 50 सदस्य उसका अनुमोदन करने वाले हों, यानी कि सेकेंडर्स हों, 50-50, 100 सदस्य। ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन लोग होंगे? देखिए, वो लोग होंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, और साथ ही साथ जो चुनाव में भाग लेने वाले जो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वह भी होंगे। यही केवल प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं, आप और मैं नहीं बन सकते। तो बट नेचुरल है कि 50 और 50, 100 की संख्या जुटा पाना उतना आसान काम नहीं है, और वो चूंकि ऐसा नहीं कर पाए इसके परिणाम स्वरूप उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल दो कैंडिडेट रह गए हैं। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स आपको मालूम होने चाहिए। और फिर आप देखिए कि एक बात और भी है, आपने टीवी चैनल्स वगैरह पर भी देखा होगा कि जब कोविंद जी अपना नामांकन पत्र दे रहे हैं या मीरा कुमार जी दे रही है, तो वो लोकसभा के महासचिव को, लोकसभा ऑफिस को दे रही है, लोकसभा के महासचिव को दे रही है। यहां आपको बस थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि चुनाव लोकसभा नहीं करा रही है, चुनाव तो हमारा चुनाव आयोग ही करा रहा है, लोकसभा उसका संचालन कर रहा है। जैसे कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो विधानसभाओं के चुनाव कैसे होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव कैसे होते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कराती है, स्टेट गवर्नमेंट कराती है ना। तो उस समय के लिए वो उन ऑफिसर्स को ये अधिकार देता है कि वो चुनाव संपन्न कराएं, अदरवाइज चुनाव आयोग के पास अपना कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो चुनाव करा सके, लेकिन उसके पीछे पूरी तरह से चुनाव आयोग ही काम कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक विशेष किस्म की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सी क्लिपिंग्स हैं न्यूज़पेपर्स की, एक तो है, एक एडिटोरियल कमेंट है जो इससे रिलेटेड है कि अब हम मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, हालांकि वो पहले का चुनाव है, उसको अवैध घोषित किया, और इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पेड न्यूज छपवाई थी, यानी कि अपने बारे में जो खबरें छपवाई उस खबर के बदले में उन्होंने पैसा दिया था, और इस तरीके से उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 2011 में भी चुनाव आयोग ने एक MLA को इसी तरह से अयोग्य घोषित किया था। तो मित्रों, चूंकि चुनाव आयोग से संबंधित है, हमारी पॉलिटी से संबंधित है, तो ये घटना आपके को मालूम होनी चाहिए, दिमाग में दर्ज होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ताकि जब आप चुनाव आयोग के अधिकार और कार्य क्षेत्रों के बारे में जाने बात करें तो ये लेटेस्ट जो अधिकार हैं या जो उसने अभी वर्डिक्ट दिया है, जो अपना फैसला सुनाया है, उसको भी कहीं आप कोट कर सकें, क्योंकि सिविल सर्विस की चुनौती होती है कि आप अपडेट रहें। मित्रों, एक मैं आपको और पेज अखबार का आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का, हिंदी में, वो स्टार्टअप के बारे में है। स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मुझे लगता है कि अभी जो एग्जाम होने हैं उसके लिए है स्टार्टअप। कल भी मैंने जनसत्ता का एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया था स्टार्टअप के बारे में, उसी के साथ आप इसे ऐड करें और स्टार्टअप को भी आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हुए कुछ पेज उसके लिए अपने रजिस्टर में सुरक्षित कर लें। तो दोस्तों, न्यूज के बारे में इतना ही। आइए अब हम थोड़ा सा विनिवेश के बारे में बात करते हैं, जो कल आपने काफी कुछ उसके बारे में जाना है। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कल मेरे पास एक दो मेल आए हैं जिसमें उन्होंने जानना चाहा है कि सर, अगर इंडियन एयरलाइंस 50,000 करोड़ रुपए के नुकसान में है और अगर इतना पैसा सरकार बाहर से जुटा लेती है तो आपने कहा था कि फिर सरकार इस बचे हुए पैसे को सामाजिक कामों में लगा देगी, डेवलपमेंट में लगा देगी, तो उसके पास चूंकि तो वो जो बाहर से पैसा आएगा उसको तो वो एयरलाइंस को दे देगी, तो उसके पास पैसा बचेगा कहां से। देखिए, सामान्य तौर पर जब आप सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी ऐसी चीज आए तो आपको डीपली अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, आफ्टर ऑल अगर सरकार बाहर से पैसा नहीं लेगी 50,000 करोड़ रुपए मान लीजिए, और इंडियन एयरलाइंस को डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो 50,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो एयरलाइंस को इसी अपनी मौत तो मरने नहीं देगी, इसको चलाना है तो चलाने के लिए उसको 50,000 करोड़ रुपए तो अपनी थैली से देने पड़ेंगे ना, अपने खजाने से ही देने पड़ेंगे। तो अगर अब उसे वो 50,000 करोड़ नहीं देने पड़ रहे हैं तो उसका पैसा बच रहा है ना, इसी पैसे का इस्तेमाल वो अपने डेवलपमेंट काम में या दूसरी जरूरी चीजों में वो करेगी। तो ये मुझे लगा कि ये क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है और भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही हो। दोस्तों देखिए, कल जब हम विनिवेश के बारे में बात कर रहे थे तो हमने केवल एक फैक्चुअल जानकारी ली है, जिसे मैं कहता हूं बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें हमने जानी है। जब तक हम बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तब तक हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। अब आप जान गए हैं, अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए। कल की बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में यही धारणा बनी होगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने में क्या हर्ज है, सरकार का पैसा बच रहा है, उस बचे हुए पैसे का सोशल डेवलपमेंट में काम आ रहा है, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो कर लेना चाहिए। दोस्तों, उत्तर इतना आसान नहीं है। अब मैं थोड़ी सी आपको समीक्षा करने के पैरामीटर्स बता रहा हूं, पैरामीटर्स इसी के बहाने। याद रखिए कि सिविल सर्विस के स्टूडेंट के रूप में आपके पास जो सबसे अच्छी कसौटी है वह है संविधान, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और सिविल सर्वेंट बन करके आपको संविधान और हमारी लेजिस्लेचर्स, जो हमारी विधायिका हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून नियमों का पालन करना है और उन उद्देश्यों को पूरा करने में एक अपनी भूमिका निभानी है। तो जब हम संविधान को उठाते हैं तो हमारे संविधान में किस तरह की आर्थिक व्यवस्था की बात कही गई है, तो आप उद्देशिका से लेकर के अंदर तक के प्रोविजंस को देखेंगे तो आपको एक बात मिलेगी, वह समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का हमने संकल्प लिया है। समाजवादी व्यवस्था क्या होती है मैं यहां बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर दूसरी चीजों के लिए वक्त नहीं रहेगा, आप जानते हैं। जहां पूंजी कुछ लोगों के ही हाथ में केंद्रित न हो, ज्यादातर लोग समान, एग्जैक्ट समान नहीं लेकिन फिर भी धन के वितरण में काफी कुछ सरकार समानता बरते, पूंजी को एक कुछ लोगों के हाथों तक केंद्रित न होने दे। यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की स्थिति है। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी के जरिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए इसी प्रणाली को अपनाया और हम अब तक चले आ रहे थे। 1990 के बाद फिर हमने देखा कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये काम नहीं कर रही है, जो हमारे पीएसयू हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं और उससे पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इनको प्राइवेटाइज किया जाए या डिसइन्वेस्ट किया जाए, ये प्रणाली हमने अपनाई। लेकिन मित्रों, जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए कुछ चीजें नुकसानदेह भी होती है। पहली बात तो यह है कि अगर जैसे एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जिस जो शेयर खरीद लेंगे वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, कंपनीज होंगी, कारपोरेट्स होंगे, और वो जब एयर इंडिया के मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो बट नेचुरल है कि अब इस पर किसका दबदबा हो जाएगा, कारपोरेट्स का दबदबा हो जाएगा, पूंजीपतियों का दबदबा हो जाएगा और पैसा उनके हाथ में केंद्रित हो होने लगेगा। तो आप देखें कि यह पूरी तरह से हमारी जो संविधान की जो व्यवस्था है समाजवादी समाज के बिल्कुल विपरीत चली जाएगी। दूसरा क्या होगा कि देखिए समाज सरकार जो है ना वो बिजनेसमैन नहीं है। सरकार का जो मूल उद्देश्य है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के साथ ही साथ समाज कल्याण, एक डेमोक्रेसी में समाज कल्याण को इग्नोर नहीं कर सकती, केवल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं चल सकती, उसको अपने समाज की जरूरतों को भी देखना है। जैसे मान लीजिए अब एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया अभी ऐसे रूट पर भी फ्लाइट चला रही है जो नुकसान में है। एयर इंडिया जानती है कि इस रूट पर अगर हम फ्लाइट बंद कर दें तो हमारी बहुत बचत हो जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं कर रही है क्योंकि उसके सामने सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट का एंगल है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम अलग नहीं कर सकते एयरलाइंस की सर्विसेज से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे लोग हैं, वहां का भी हमें डेवलपमेंट देखना, आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है कि एयरलाइंस से वो जुड़े, टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि वो एयरलाइंस से जुड़े। तो ठीक है, सरकार का एयरलाइंस तो वहां नुकसान उठा रहा है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे बहुत से फायदे हो रहे हैं। तो उन फायदों का मूल्यांकन हम एयरलाइंस की बैलेंस शीट में नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब प्राइवेट के हाथ में आप दे देंगे तो बट नेचुरल है कि वो तो ऐसी एयरलाइंस, ऐसे रूट पर एयरलाइंस तुरंत ही बंद करेंगे जहां नुकसान हो रहा है। वो कहेंगे कि यहां चलाने से हमको क्या फायदा। तो आप देखें कि जो एक रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए, जो एक पूरी तरह से जो एक समान आर्थिक विकास होना चाहिए पूरे क्षेत्र का, वो नहीं हो पाएगा। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि खासकर रशिया के बिखर जाने के बाद और 1990 के बाद का जब दौर चला, तो 1993 में चेक जो गणराज्य था उसने अपने यहां के 1000 पीएसयू को पूरी तरह से डिसइन्वेस्ट कर दिया। 1000 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, वो सारे के सारे फेल हो गए। यानी कि ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को डिसइन्वेस्ट करने के बाद अगर वो प्राइवेट के हाथ में चला गया तो वो बिल्कुल फायदे वाला ही हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी तो फेल हो रही हैं। रशिया ने भी यही किया, तो रशिया भी बेसिकली फेल हुआ। इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर रहा है कि वो मिडिल पाथ को लेकर चल रहा है, मध्यम मार्ग को लेकर के चल रहा है। इसीलिए शुरुआत से ही 1990 के बाद से ही आप देखिए कि भारत ने ऐसा नहीं है कि अपने सारे पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया या प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। धीरे 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 हमारे देश ने यह कदम उठाया है। जो इंडियन जो एयर इंडिया की मांग है अभी से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है। 1996-97 से इसकी मांग की शुरुआत हो गई थी कि इसका प्राइवेटाइज कीजिए। देखिए रेलवे के बारे में भी बात होती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भारत ने इस मामले में एक ज्यादा प्रैग्मेटिक स्टेप यानी कि कह लीजिए व्यावहारिक कदम उठाया है। तो दोस्तों समीक्षा के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और भी आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत ही जो बेसिक पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके आंसर में इंक्लूड होने ही चाहिए, वो मैंने यहां आपको बता दिए हैं। इस पर आप सब भी विचार करें, और मुझे लगता है कि इसके साथ ही अब जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है वो लगभग समीक्षात्मक दृष्टि से पूरा हो चुका है। आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं होना है, बहुत ही व्यावहारिक किस्म की जानकारी और मूलभूत जानकारी आपको चाहिए। और कल और आज इन दोनों के डेली ऑडियो लेक्चर में मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को मिला दें तो ऑलमोस्ट आपकी एक दृष्टि बन जाएगी कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। और अभी तो आगे इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, तो उससे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मित्रों अब मैं आता हूं इसके अंतिम चरण पर, और वो जो अंतिम चरण है वो कुछ नौजवान साथियों के स्वागत का चरण है। मैं अब स्वागत करता हूं उन अपने चार साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विनोद पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, महिमा शुक्ला शिवपुर मध्य प्रदेश से, विजेंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और सत्यम मिश्रा आप भी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। दो दिनों के बाद सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।